पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। नॉर्दर्न टेरिटरी में नए कोरोना मामले आने के बाद हाई अलर्ट जारी। प्रदूषण के चलते दिल्ली हरियाणा में निर्माण गतिविधियों पर रोक। और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के फाइनल मैच में होगी स्पेन के खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। नॉर्दर्न टेरिटरी के स्वास्थ्य अधिकारी रॉबिन्सन नदी के पास एक छोटे से समुदाय में हुई 20 प्राथमिकता जांचों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को सामने आए समुदाय के एक मामले के बाद यहां लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। नॉर्दर्न टेरिटरी में आज 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। टेरिटरी में अब तक 234 निकट संपर्क पाए गए हैं। मंगलवार को सामने आए मामलों में फेडरल सांसद मलांडरी मैकार्थी की बहन भी शामिल हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी सांसद मैकार्थी ने एबीसी से कहा था कि उन्हें चिंता है कि लोग कोरोना ग्रस्त होने से शर्मिंदा हैं और इसलिए भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने वाले अधिकारियों को पूरा सच नहीं बता रहे। उन्होंने इंडिजिनस समुदायों में सुलभ संचार की कमी की भी शिकायत की है और कहा है कि विदेशों और गठबंधन सरकार से फैलने वाली टीकाकरण से जुड़ी भ्रामक जानकारियां समुदाय के लिए हानिकारक रही हैं। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने कहा है कि वो सरकार द्वारा प्रस्तावित महामारी कानूनों में कोई राजनीतिक खेल नहीं खेलेंगे।
People who have railed against because they thought it was in their political interests, bureaucrats making these decisions, calling, demanding that politicians make these decisions, and when a bill's put into the parliament to achieve exactly that, precisely that, the opposition are somehow concerned it should go back to bureaucrats. Like, it is the definition of a political game. And those who are out the front being violent about it, well, I'll leave you and the 90% of Victorians who've done the right thing, they can make their own judgments about some of those scenes.
Public Health and Wellbeing Amendment Pandemic Management Bill पर मंगलवार को उच्च गृह में शुरू हुई चर्चा देर रात तक चली। श्री एंड्रूज का कहना है कि वे प्रदर्शनकर्ता जो रात भर विक्टोरियाई सांसद की सीढ़ियों की घेराबंदी करते रहे, विक्टोरिया की बहुमत जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उधर न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे उस प्रस्तावित विधेयक पर आने वाली गर्मियों के मौसम में विचार करेंगे जिसके जरिए आपातकालीन कोविड-19 की ताकतों को साल 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस विधेयक का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड ने रखा था। इसके जरिए स्वास्थ्य मंत्री के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेश जैसे अनिवार्य मास्क नियम, कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की ताकत और आदेश अवहेलना पर बढ़े हुए फाइन लगाने के अधिकार रहेंगे। श्री पेरोटे ने इस विधेयक पर पार्टी कक्ष में सोमवार रात मतभेद होने के बाद इसको कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दिया था।
There will no doubt be provisions that need to be extended, but it's working through what's necessary, what's not. I, like anyone, wants to make sure that we have government out of the way. But at the same time, we've got to keep the protection, the healthcare of people right across our state, and I'll work through that with the health minister.
इन नियमों की समयावधि आने वाले मार्च में समाप्त हो जाएगी। विपक्ष नेता एंथनी अल्बनीजी ने वादा किया है कि लेबर सरकार 10 मिलियन से अधिक परिसरों में 2025 तक विश्व स्तरीय इंटरनेट स्पीड लेकर के आएगी। वे गृहस्थियां या व्यवसाय जो इंटरनेट के लिए कॉपर वायर पर निर्भर हैं, उन्हें फाइबर कनेक्शन पर अपना इंटरनेट स्थानांतरित करने का विकल्प दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये योजना गठबंधन सरकार की गलतियों को सुधारने की दिशा में एक कदम होगी।
Scott Morrison has declared that we're in an election campaign. Well, that's a campaign that Labor welcomes. Well, Labor will have a repair job, and Michelle Rowland, as the incoming communications minister, if we're successful, will be in charge of that repair job. Australia at the moment is running 59th when it comes to broadband. We are a G20 nation. We should be doing much, much better than that.
फेडरल संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने इस योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि फेडरल सरकार ने इस उद्योग में $4.5 बिलियन का निवेश पहले ही किया है और लेबर सरकार से उनकी योजना के आर्थिक पोषण का विस्तृत विवरण मांगा है। उधर विश्वविद्यालयों में विदेशों के दखल से निपटने के लिए लागू हुए नियमों के अंतर्गत शिक्षाविदों को अब यह नहीं बताना होगा कि वे किसी विदेशी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या नहीं। इसके स्थान पर संस्थानों को इस बात का आंकलन करना होगा कि कौन से स्टाफ विदेशी दखलंदाजी के खतरे पर हैं और इन लोगों को अपने किसी भी विदेशी सरकार, सेना, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों का खुलासा करना होगा। उनको इस बात का भी खुलासा करना होगा कि उनके किसी विदेशी विश्वविद्यालय से संबंध हैं या नहीं, और यह कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी देश से आर्थिक समर्थन मिल रहा है या नहीं। इन नई गाइडलाइंस, जिन्हें 2019 के नियमों के बाद अपडेट किया गया है, उनमें विदेशी राजनीतिक पार्टियों से संबंधों का खुलासा करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। गृह मंत्री कैरन एंड्रूज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लौटने के बीच पारदर्शी चर्चा सुनिश्चित करना अहम बात है। देश में कोरोना मामलों की बात करें तो विक्टोरिया में आज 996 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले और 9 मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य की 87% 12 साल से ऊपर की जनता को कोरोना टीके की पूर्ण खुराक मिल चुकी है। वहीं न्यू साउथ वेल्स में आज 321 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और राज्य की 91.3% 16 साल से अधिक की जनता को अब कोरोना रोधी टीके की पूर्ण खुराक मिल चुकी है। उधर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आज 11 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने आज 70% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दवा कंपनी फाइजर ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक समूह के साथ दूसरी दवा कंपनियों को उनकी प्रयोगात्मक कोविड-19 दवा का उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। फाइजर के इस कदम से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के लिए कोविड-19 का उपचार संभव हो सकता है। फाइजर ने कहा है कि वे इस एंटीवायरल दवा का लाइसेंस जिनेवा की मेडिसिन पेटेंट पूल को 95 देशों में प्रयोग के लिए देंगे। कोविड-19 के मौजूदा उपचार ज्यादातर इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हैं। इस गोली के रूप में आने वाले उपचार से कोरोना का इलाज शुरुआती स्तर पर घर पर ही किया जा सकेगा, जिससे गंभीर रूप से बीमार होना या मृत्यु जैसी संभावनाओं को टाला जा सकेगा। उधर बेलारूस और पोलैंड के मध्य हिंसा भड़क उठी है। पोलैंड की सीमा रक्षकों ने बेलारूस की तरफ से आ रहे शरणार्थियों पर आंसू गैस और वाटर कैनन्स का प्रयोग कर उन्हें सीमा पार करने से रोकने का प्रयास किया है। इसी बीच कुछ शरणार्थियों ने पोलैंड के रक्षा बल पर पथराव किया और सीमा पर लगे बाड़ों को बलपूर्वक तोड़ दिया। बेलारूस पर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने शरणार्थियों को यूरोपीय संघ को नीचा दिखाने के इरादे से उकसाया है, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस आरोप का खंडन किया है।
We're not collecting refugees all over the world and bringing them to Belarus as Poland has informed the European Union. Those who come to Belarus legally, we accept here the same way any other country would. Those who violate the law even in the slightest, we put on a pain and send back home. There are 5,000 such people deported as of today.
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी सरकार ताइवान की स्वाधीनता को प्रोत्साहित नहीं कर रही है।
I said that they have to decide. They, Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We're encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires. And that's what we're doing. Let them make up their mind. Period.
श्री बाइडेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए एक आयोजन में इससे पहले कहा था कि ताइवान स्वतंत्र है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। ये बयान उनकी चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ हुई ऑनलाइन वार्ता के एक दिन बाद आया था। और अब खबरें भारत से। प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर मजदूर संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मजदूरों के लिए काम बंद होने पर मुआवजे की मांग की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि निर्माण गतिविधियों पर ब्लैंकेट बैन लगाना उचित नहीं है। याचिका में कहा गया कि निर्माण पर अचानक पूर्ण प्रतिबंध लगाने से श्रमिकों को गंभीर वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अचानक सामान्य रोक काम के मौलिक अधिकार का हनन करती है। ज्ञात हो कि निर्माण क्षेत्र दिल्ली में सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार देता है। इस तरह के प्रतिबंधों के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि इस तथ्य के बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है, साथ ही देश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 8,865 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और इस एक दिन में 11,971 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी दौरान 197 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हुई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.21 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। गार्बिन मुगुरुजा साथी स्पैनियार्ड पौला बडोजा को हराकर वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स के चैंपियन मैच में पहुंच गई हैं। इसी बीच पुरुष विश्व नंबर 2 दानील मेदवेदेव अब भी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उन्होंने ATP फाइनल्स में श्री ज़्वेरेव को करारी शिकस्त देकर शीर्ष 4 में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बारिश बढ़ने की आशंका है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 14 जबकि न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तेज धूप छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।